नौकरी की किताब 17-16 संवाद चक्र 3 कार्य 22 से 27 जॉन वाल्टन द्वारा। यह डॉक्टर जॉन वाल्टन और जॉब की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह 17-16 संवाद चक्र 3 कार्य 22 से 27 है। संवाद चक्र 3 का परिचय 12:26 से 12:46। अब हम संवादों के चक्र 3 में जाने के लिए तैयार हैं। चक्र 3 बहुत संक्षिप्त है क्योंकि अधिकांश तर्क खत्म होते जा रहे हैं। इस चक्र में जोफर बिल्कुल भी नहीं बोलता है और बिलदाद का भाषण बहुत छोटा होता है, इसलिए हमारे पास संवाद में ही कम सामग्री है। कठिन श्लोक अय्यूब 22:2-3 12:46 से 6:32। हालांकि हमारे पास निपटने के लिए कुछ बहुत ही कठिन छंद हैं और इसलिए हम पहले तकनीकी चीजों पर काम करेंगे और सारांश पर आगे बढ़ने से पहले उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। पहला अध्याय 22:2-3 में है। यहां हम एलीपज के इस अंतिम भाषण की शुरुआत में हैं। एनआईवी अनुवाद करता है, क्या कोई व्यक्ति ईश्वर के लिए लाभकारी हो सकता है? क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति भी उसे लाभ पहुंचा सकता है? यदि आप धर्मी होंगे तो इससे सर्वशक्तिमान को क्या खुशी होगी? यदि आपके तरीके निर्दोष होंगे तो उसे क्या लाभ होगा? मैं विभिन्न अनुवादों और टिप्पणीकारों को देखूंगा जो अनुवाद में व्यापक अंतर दिखाते हैं। तो कुछ उदाहरण, नॉर्मन हाबेल कहते हैं, क्या एक नायक एल को खतरे में डाल सकता है? या एक ऋषि प्राचीन को खतरे में डाल सकता है? यदि आप धर्मी हैं तो क्या यह शादाई का उपकार है, या यदि आप अपने तरीकों को सही करते हैं तो क्या यह उसका लाभ है? हार्टले अनुवाद करते हैं, क्या किसी व्यक्ति से ईश्वर को लाभ हो सकता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके साथ सद्भाव में रहे? शादाई के लिए यह कौन सी संपत्ति है कि आप निर्दोष हैं, या इससे आपको क्या फायदा है कि आप दावा करते हैं कि आपके तरीके निर्दोष हैं? क्लाइन का अनुवाद, क्या कोई इंसान भगवान के लिए लाभदायक हो सकता है? क्या एक ऋषि भी उसे लाभ पहुंचा सकता है? यदि आप धर्मी हैं तो क्या यह सर्वशक्तिमान के लिए संपत्ति है? यदि आपका आचरण निर्दोष है तो क्या उसे लाभ होगा? आप देख सकते हैं कि इनके बीच व्यापक भिन्नता है। जॉब की पुस्तक में इसी तरह के वाक्य विन्यास के कुछ अन्य उदाहरणों के आधार पर इन छंदों में बहुत जटिल वाक्य विन्यास है, और अन्य छंदों के वाक्य विन्यास के आधार पर जो बिल्कुल उसी तरह से शुरू होते हैं और यह संरचना को उसी तरह से स्थापित करता है। मुझे एक अलग सुझाव देना है। 3 पद जहां एक ही संरचना होती है, अय्यूब 13:07, अय्यूब 21:22 और यह अय्यूब 22:02 में इसे प्रस्तुत करूंगा, क्या एक बुद्धिमान मध्यस्थ परमेश्वर की ओर से सेवा करने वाले मनुष्य के लिए कोई अच्छा काम कर सकता है? वह परमेश्वर की ओर से सेवा करने वाला एक बुद्धिमान मध्यस्थ है। क्या ऐसा मध्यस्थ किसी मनुष्य को कोई लाभ पहुंचा सकता है? जब आप अपने आप को सही ठहराएंगे तो क्या ईश्वर अनुकूल प्रतिक्रिया देगा? क्या जब आप अपने तरीकों का पूरा विवरण देंगे तो लाभ होगा? तब आप देख सकते हैं कि यह थोड़ा अलग है। अय्यूब 34:9 से पता चलता है कि शब्द गेवर, जिसे इनमें से अधिकांश का अनुवाद आदमी के रूप में किया गया है, हालांकि हाबेल ने इसका अनुवाद हीरो के रूप में किया है, अय्यूब 34:9 से पता चलता है कि यह विषय के बजाय वस्तु होनी चाहिए, और यह वास्तव में है मेरे प्रतिपादन और दूसरों के बीच मुख्य अंतरों में से एक। मैंने पहले वाक्य के विषय के रूप में बुद्धिमान मध्यस्थ रखा। हिब्रू शब्द मास्किल का अनुवाद, जो हिब्रू पाठ और अधिकांश अनुवादों दोनों में दूसरी पंक्ति में होता है, लेकिन फिर ये अन्य छंद जिन्हें मैंने पहली पंक्ति के विषय के रूप में भी लागू करने का कारण दिखाने के लिए इंगित किया था। मैंने सकान क्रिया का अनुवाद कोई भी अच्छा करो किया है। क्या इससे कोई फायदा हो सकता है? और मैंने यह नहीं कहा कि ईश्वर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु है, जैसे कि ईश्वर के लिए लाभ। मैंने उसे व्याकरणिक रूप से उस कार्रवाई से एक कदम आगे हटा दिया है जो भगवान की ओर से है। और फिर मेरे द्वारा उल्लिखित अन्य छंदों के आधार पर ऐसा करने का कारण है। अन्य दो घटनाओं पर आधारित निर्णय हमें इस कविता को उस अनुरूप प्रस्तुत करने में मदद करता है जिस तरह हम नौकरी की पुस्तक में अन्य स्थानों पर वाक्य विन्यास स्थापित पाते हैं। अन्य अनुवादों के विपरीत, जिन्होंने श्लोक 3 में पहली पंक्ति में क्रिया को धर्मी बनो या निर्दोष बनो के रूप में प्रस्तुत किया है, मैंने इसे अय्यूब 40 श्लोक 8 के साक्ष्य पर अपने आप को सही ठहराने का अनुवाद किया है, जहां अय्यूब था भगवान द्वारा खुद को सही ठहराने का आरोप लगाया गया। सदक क्रिया का कल रूप इसके अलावा अय्यूब की पुस्तक में पुष्टि के लिए कई बार उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए 11.2 और 13.8। अंत में 22.3 में अंतिम क्रिया तमम की जड़ों का हिफिल रूप काफी चुनौतीपूर्ण है। ऊपर दिए गए अनुवाद इसे भिन्न भिन्न प्रकार से एक विशेषण के रूप में मानते हैं, जिसे तथ्य के रूप में निर्दोष होना या निर्दोषता का दावा या यहाँ तक कि एक क्रिया के रूप में अपने तरीकों को सही करना के रूप में व्यक्त किया गया है। यह हिफिल में एक मौखिक रूप है जो केवल 8 बार होता है। अपने तरीकों का पूरा लेखा जोखा दें का मेरा अनुवाद इस अवलोकन पर आधारित है कि कई अन्य संदर्भों में यह मोटे तौर पर किसी चीज का भुगतान करने या उसका लेखा जोखा देने से संबंधित है। ध्यान दें विशेषकर 2 राजा 22:4। तो फिर उन सभी व्याकरणिक और वाक्यात्मक स्थितियों के आधार पर मैंने इसे प्रस्तुत किया है। क्या एक बुद्धिमान मध्यस्थ कोई अच्छा कर सकता है? मुझे फिर से ऐसा करने दीजिए। क्या ईश्वर की ओर से सेवा करने वाला एक बुद्धिमान मध्यस्थ किसी इंसान का भला कर सकता है? क्या ऐसा मध्यस्थ कोई मानवीय लाभ पहुंचा सकता है? जब आप खुद को सही ठहराएंगे तो क्या ईश्वर अनुकूल प्रतिक्रिया देगा? जब आप देंगे तो क्या कोई लाभ होगा? तुम्हारे तौर तरीकों का पूरा लेखा जोखा यह उन तर्कों के संदर्भ में बहुत मायने रखता है जो पुस्तक में दिए गए हैं और जिस तरह के वाक्य विन्यास और शब्दावली का उपयोग हम अन्य स्थानों पर देखते हैं। कठिन श्लोक अय्यूब 26:7, 6:32 से 13:36। जिस पद पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ वह अय्यूब 26:7 है। NIV इसका अनुवाद करता है। वह उत्तरी आकाश को खाली जगह पर फैलाता है, वह पृथ्वी को शून्य पर लटकाता है। इस पर ध्यान देना उचित है क्योंकि कुछ नेताओं ने उस अंतिम वाक्यांश को देखा है, पृथ्वी को किसी भी चीज पर लटकाना, और निष्कर्ष निकाला है कि नौकरी की किताब में किसी तरह वे पृथ्वी के बारे में जानते हैं, बस एक तरह से कक्षा में लटकी हुई है। गुरुत्वाकर्षण और केंद्राभिमुख बल और उन सभी चीजों से जो मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही अनुचित विचार है कि पुस्तक ऐसा मानती है या उसका अनुमान लगाती है। यह वास्तव में शब्द के अनुरूप नहीं है। तो आइए इस पर एक नजर डालें। पंक्ति के पहले भाग में वह उत्तरी आकाश में फैला हुआ है, उत्तर के लिए शब्द ज़ाफ़ोन है। यह उत्तर के लिए काफी सामान्य हिब्रू शब्द है, लेकिन यह माउंट ज़ाफ़ोन कनानी पर्वत को भी संदर्भित करता है जहां देवता निवास करते थे, इसलिए इसका महत्व कंपास के बिंदुओं के साथ इसके अभिविन्यास में नहीं है, बल्कि पवित्र पर्वत के संदर्भ के रूप में इसके उपयोग में है जो इसराइल के बाहर के साहित्य में जाना जाता है। यहां तक कि इसराइल में भी कुछ भजन ऐसा ही करते हैं। तो ज़ाफ़ोन यहां सिर्फ एक दिशा से कहीं अधिक है। यदि हम इसे ब्रह्मांडीय पर्वत के संदर्भ में समझें तो ब्रह्मांडीय पर्वत की नींव पाताल में है, और इसकी ऊंचाई स्वर्ग में है और दिव्य परिषद इसकी ऊंचाइयों पर मिलती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का मिलन स्थल है और देवताओं की सभा के लिए सभा स्थल है और इस प्रकार उनका निवास स्थान है स्वर्ग। तो मैं उस प्रकार के संदर्भ के रूप में ज़ाफ़ोन को ले रहा हूं। क्रिया वह ज़ाफ़ोन को फैलाता है। फैलता है नोटे है एक हिब्रू शब्द जो बताता है कि वह स्वर्ग के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यह क्रिया आमतौर पर बाइबल के ब्रह्मांड विज्ञान ग्रंथों में स्वर्ग को अपनी वस्तु के रूप में लेती है। अब वह खाली जगह पर ज़ाफ़ोन कुछ स्वर्गीय चीज फैला रहा है। रिक्त स्थान शब्द तोहू है। इसे उत्पत्ति 1:02 तोहू वाबोहू निराकार और शून्य से जाना जाता है और उत्पत्ति 2 और अन्य 30 से अधिक घटनाओं में जो हमें यह शब्द मिलता है, यह उस चीज को संदर्भित करता है जो इस अर्थ में अस्तित्वहीन है कि यह गैर है, गैर कार्यात्मक आदेश दिया गया और इसलिए यह अव्यवस्थित दुनिया है। तो यह विचार कि ईश्वर स्वर्गीय ज़ाफ़ोन को तोहू के ऊपर फैलाता है, उस चीज के ऊपर जो अस्तित्वहीन है, जिसे आमतौर पर अस्तित्वहीन कहा जाता है, वह है ब्रह्मांडीय जल। मैं जानता हूं कि हम सोचते हैं कि अस्तित्व का संबंध भौतिक से है, लेकिन प्राचीन दुनिया में ऐसा नहीं था। उनका मानना था कि अस्तित्व का संबंध कार्य और व्यवस्था से है। तो जिस चीज को हम भौतिक मानते हैं वह अस्तित्वहीन भी हो सकती है। वे महासागरों को अस्तित्वहीन मानते थे, वे रेगिस्तानों को अस्तित्वहीन मानते थे, क्योंकि उन्हें मानव क्षेत्र में आने और उनके लिए कार्य करने का आदेश नहीं दिया गया था। तो यहाँ यह विचार कि ज़ाफ़ोन एक तोहू में फैला हुआ है, ऊपर के गैर मौजूद, गैर कार्यात्मक, गैर व्यवस्थित ब्रह्मांडीय पानी का एक संकेत है जिसके ऊपर स्वर्ग वास्तव में फैला हुआ था। CF भजन 104:2-3। पहली पंक्ति में तोहू दूसरी पंक्ति में अद्वितीय वाक्यांश वेलेमा के समानांतर है। यही वह शब्द है जिसका अनुवाद फिर से NIV कुछ नहीं के रूप में करता है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां यह शब्द आता है और निश्चित रूप से यह हमारे लिए इसे बहुत कठिन स्थिति बनाता है। हम आमतौर पर शब्दों का अर्थ उनके उपयोग से निर्धारित करते हैं। यदि हमारे पास उपयोग के अन्य उदाहरण नहीं हैं, तो हमें शब्द का अर्थ समझने की कोशिश में बाधा आती है। यह विचार कि इसका पदार्थहीन स्थान जहां पृथ्वी लटकी हुई है कालानुक्रमिक होगा। प्राचीन विश्व या हिब्रू बाइबल में कोई भी ऐसी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानता है। पुनः अस्तित्वहीन की मिस्री भावना के साथ इसका तात्पर्य उस चीज से है जिसमें कार्य या व्यवस्था का अभाव है। इस दूसरे उपवाक्य में क्रिया ताल है जिसका अर्थ है निलंबित करना। यह अक्सर किसी को फांसी देने के लिए निष्पादन के एक रूप को संदर्भित करता है। इसका अनुवाद निलंबित करना बेहतर है, क्योंकि वे किसी को धरना या उस प्रकार की किसी चीज या पेड़ पर लटका देंगे। इसका बेहतर अनुवाद निलंबित है न कि खत्म। यहां तक कि इस वाक्य में पृथ्वी शब्द भी सीधा नहीं है। हमें लगता है कि यह आसान होगा, लेकिन कुछ उदाहरणों में हिब्रू बाइबल और प्राचीन निकट पूर्व सजातीय भाषाओं दोनों में इसका संदर्भ निचली दुनिया से भी है। इसलिए यहां मेरा मानना है कि एरेट्स का संदर्भ पृथ्वी से नहीं बल्कि पाताल लोक से होना चाहिए। तो हमारे पास पहली पंक्ति में तोहू और दूसरी में बेलेमा दोनों हैं जो गैरअस्तित्व का वर्णन करते हैं, जो कि ब्रह्मांडीय जल है जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे पास ऊपर ब्रह्मांडीय जल और नीचे ब्रह्मांडीय जल है। हमारे पास ज़ाफ़ोन है जो उपरोक्त दायरे के बारे में बात करता है, और हमारे पास इरेट्स है जो नीचे के दायरे के बारे में बात करता है। इसलिए मेरा प्रतिपादन होगा स्वर्ग ब्रह्मांडीय गैरअस्तित्व पर फैला हुआ है, पृथ्वी गैरअस्तित्व पर लटकी हुई है, तो आपको ऊपर का पानी और नीचे का पानी मिलता है। ये दो पद जिनके बारे में हमने बात की है वे केवल उन कठिनाइयों के उदाहरण हैं जिनका हम अय्यूब की पुस्तक में सामना करते हैं। जब हम कोई अंग्रेजी अनुवाद खोलते हैं तो हमारे मन में अक्सर यह विचार आता है कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो गया है और पाठ समझ में आ गया है। लेकिन विशेष रूप से हिब्रू बाइबल में जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अभी भी बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे लिए समस्याएं पैदा करते हैं या जिनके अर्थ अज्ञात हैं या शायद जिनके अर्थ आम तौर पर ज्ञात हैं, लेकिन पूरी बारीकियों को अंग्रेजी शब्दों में पकड़ना मुश्किल है। हमें वाक्य विन्यास संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विशेषकर काव्यात्मक ग्रंथों में, और इसलिए हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनुवादक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, टिप्पणीकार इस सब पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं, पाठ की यथासंभव सर्वोत्तम समझ प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए हर कोई मिलकर काम कर रहा है। नौकरी की किताब, जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, विशेष रूप से कठिन है, और इसलिए हम इन समस्याओं को उन दो समस्याओं के समान पाते हैं जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। चक्र तीन की अलंकारिक रणनीति 13:36 से 13:53। तो सौभाग्य से समझ के दूसरे स्तर पर हम अलंकारिक रणनीति और चक्र की सामान्य समझ संवाद के चक्र को देख सकते हैं और एक अच्छा विचार प्राप्त कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, भले ही कुछ छंद अभी भी दे रहे हों हमें परेशानी। चक्र तीन एलीपस और अय्यूब की प्रतिक्रिया 13:53 से 16:33। तो आइए चक्र तीन के तर्कों को संक्षेप में प्रस्तुत करें। निःसंदेह एलीफाज मित्रों के लिए मुख्य वक्ता है। मध्यस्थ के बारे में आपकी सारी बातचीत का विचार मूल रूप से उसके पास है। याद रखें, अय्यूब ने इसे पहले भी उठाया है। एक मध्यस्थ, वकील, गोयल, उद्धारक, मध्यस्थ और सुनवाई की आपकी सभी बातें खोखली हैं। यह एक स्मोक स्क्रीन है। परमेश्वर तुम्हारे अन्याय के दुष्ट कार्यों को स्पष्ट रूप से जानता है। आपको वह मिल गया जिसके आप हकदार हैं, और मैं एक बात से इससे खुश हूं। आपकी सबसे अच्छी कार्रवाई सुनना शुरू करना और बहस करना बंद करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो बस उन सभी लाभों और उपकारों की कल्पना करें जिनका आप फिर से आनंद लेंगे। अब अपना सामान वापस पाने पर एलीपस के सामान्य फोकस पर ध्यान दें। यहां उसे अभी भी मित्र मानना कठिन है। ये बहुत कठोर शब्द हैं। वह अब कोमल नहीं हो रहा है। यदि वह कभी था तो वह अब अय्यूब के साथ नरम व्यवहार नहीं कर रहा है। इसलिए एलीपज अपने आरोपों में और भी गहरे उतरता जा रहा है। अय्यूब ने शायद ही एलीपस को अपने कथन का सारांश देने के बारे में सोचा हो, यदि मुझे ईश्वर मिल जाता तो मैं कल्पना करता हूं कि वह कैसा होगा, लेकिन यह निराशाजनक है। मैं निर्दोष हूं और वह यह जानता है। यह कितनी भयावह स्थिति है। भगवान इस गड़बड़ी के बारे में कुछ क्यों नहीं करते? दमनकारी लोग बिना किसी जवाबदेही के जो चाहते हैं वही करते हैं। गरीब लोग जो अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके अनियंत्रित अत्याचार से पीड़ित हैं। अपराधी बेलगाम अपना काम करते रहते हैं, लेकिन मुझे अब भी यकीन है कि ऐसे लोगों का कोई भविष्य नहीं है। उनकी दुष्टता अंततः उन पर हावी हो जाएगी। देखें कि अय्यूब अभी भी प्रतिशोध सिद्धांत पर कायम है और वह अभी भी दुनिया को प्रतिशोध सिद्धांत के साथ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह मानता है कि उसकी अपनी परिस्थितियां, उसके अपने अनुभव वास्तव में उस सिद्धांत का बहुत अच्छी तरह से समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसलिए एलीपज की सलाह है, पश्चाताप करो, बहाल हो जाओ और व्याख्यान सर्किट पर जाओ। मैं इसे थोड़ा हास्यास्पद ढंग से कहता हूं क्योंकि वह मूल रूप से यह विचार प्रस्तुत करता है, तब आप हर किसी को बता सकते हैं कि भगवान ने आपके जीवन में कैसे काम किया है। तो व्याख्यान सर्किट पर जाएं। अय्यूब का उत्तर, अपने चारों ओर देखो। जब दुनिया इतनी अव्यवस्थित हो तो अपने बारे में कौन सोच सकता है। तो एलिफाज और नौकरी का आदान प्रदान इसी प्रकार होता है। चक्र तीन, बिलदाद और अय्यूब की प्रतिक्रिया, 16:33 से 18:04। अब बिलदाद केवल कुछ छंदों के लिए कूदता है और मूल रूप से युगों के ज्ञान को याद करता है, वह बिलदाद है। ईश्वर अकल्पनीय रूप से महान है। मनुष्य आंतरिक रूप से दोषपूर्ण है और अंततः कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद बिलदाद। बिलदाद को अय्यूब की प्रतिक्रिया, आपकी स्थिति बेतुकी और पूरी तरह से अप्रासंगिक है। आपने व्यवस्था स्थापित करने वाले ईश्वर का उल्लेख किया है, लेकिन आपने ईश्वर के कार्य की विशालता को समझना शुरू नहीं किया है। फिर भी उसने ब्रह्मांड में जो व्यवस्था स्थापित की है, उसके लिए श्लोक 26 यहीं आता है, वह मेरे जीवन में अव्यवस्था के अलावा कुछ नहीं लाया है। फिर भी मैं आप सभी द्वारा दी गई सलाह का पालन करूंगा। मुझे क्षमा करें, मुझे वह ठीक से समझने दो। फिर भी मैं आप सभी की दी हुई सलाह का कभी पालन नहीं करूंगा। मेरी धार्मिकता ही मेरे पास है। मैं अंत तक इससे जुड़ा रहूंगा। तुम मेरे शत्रु बन गए हो और इस प्रकार परमेश्वर के भी शत्रु बन गए हो। तो हम सभी जानते हैं कि आपके लिए क्या है। तो बिलदाद की सलाह को संश्लेषित करते हुए उन तथ्यों का सामना करें जिन्हें परंपरा सबसे अच्छी तरह जानती है। अय्यूब का उत्तर, ईश्वर की अपार शक्ति ने ब्रह्मांड में व्यवस्था ला दी है, लेकिन मेरे जीवन में नहीं। मैं ईश्वर का शिकार हूं और आप भी होंगे। यहां मैं केवल अपनी धार्मिकता से चिपके रहने के लिए खड़ा हूं। भाषणों की इस श्रृंखला का दार्शनिक फोकस और समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि अय्यूब पाप स्वीकार करेगा या नहीं। संपूर्ण संवाद चक्र इसी बारे में है। एलिपस ने अपने आरोपों की व्याख्या की, जिसे अय्यूब ने दृढ़तापूर्वक नकार दिया। चुनौती देने वाले के आरोप पर लौटें, 18:04 से 19:24। याद रखें कि पुस्तक की शुरुआत से ही मेज पर चुनौती यह थी कि अय्यूब अपने चेहरे पर ईश्वर को कोसेगा। सवाल यह है कि निष्काम धार्मिकता है या नहीं। हमने इस विचार के बारे में बात की है कि अय्यूब को अपनी ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत है, चाहे वह ईश्वर के बारे में या दुनिया के बारे में कुछ भी सही या गलत हो, या अपनी स्थिति के बारे में उसकी धारणा के बारे में हो, या वह अपने अनुभवों का मूल्यांकन कैसे करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक वह अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखता है कि उसकी धार्मिकता धार्मिकता के बारे में है, लाभ के बारे में नहीं, तब चुनौती देने वाले का आरोप दूर हो जाएगा। दोस्तों और पत्नी को उस स्थिति का प्रतिनिधित्व करना याद है जिससे अय्यूब को उसकी धार्मिकता के बजाय उसके सामान को महत्व देना पड़ा। अय्यूब ने दृढ़तापूर्वक उस सोच का खंडन किया है। संवाद अनुभाग का निष्कर्ष, 19:24 से 21:02। इसका मतलब है कि हम वास्तव में अध्याय 27, 1-6 तक एक प्रमुख निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये अय्यूब के अंतिम शब्द हैं और मैंने इसे संक्षेप में प्रस्तुत किया है, लेकिन आइए इसे पढ़ें क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि संवाद अनुभाग कैसे समाप्त होता है। मैं वास्तव में 27:2 शुरू करने जा रहा हूं। निश्चित रूप से ईश्वर जीवित है जिसने मुझे न्याय से वंचित कर दिया है, सर्वशक्तिमान जिसने मेरे जीवन को कड़वा बना दिया है। जब तक मेरे भीतर जीवन है, मेरे नथुनों में ईश्वर की सांस है, मेरे होंठ कोई बुरी बात न बोलेंगे और मेरी जीभ झूठ न बोलेगी। एक पल के लिए रुकें, वह किस झूठ की बात कर रहा है? वह जिस झूठ के बारे में बात कर रहा है उसका पता चल जाएगा यदि वह सहमत हो जाए कि उसने पाप किया है। यदि वह उस पाप को स्वीकार कर ले जिसके बारे में उसे विश्वास नहीं था कि उसने पाप किया है। इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी नहीं मानूंगा कि आप सही हैं। जब तक मैं मर नहीं जाता, मैं अपनी ईमानदारी से इनकार नहीं करूंगा। फिर हम किस अखंडता की बात कर रहे हैं? अगला श्लोक, मैं अपनी बेगुनाही बनाए रखूंगा और इसे कभी जाने नहीं दूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कार नहीं करेगी। अय्यूब अपनी बेगुनाही पर कायम है, यानी कि उसने इसके लायक कुछ भी नहीं किया है कि वह धर्मी है, और यह सब इसी के बारे में है, सामान के बारे में नहीं। यही उसकी ईमानदारी है। चैलेंजर का मामला पूरा हो गया। अय्यूब ने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी 21:02 से 21:43। यह भाषण फिर संवाद अनुभाग में यह अंतिम खूंटी चैलेंजर के विवाद के उपचार को निष्कर्ष तक लाता है। इस बिंदु पर चैलेंजर का मामला पूरा हो गया है और वह गलत साबित हुआ है। अय्यूब ने भीषणतम हमले के बावजूद अपनी बेगुनाही बरकरार रखी है और उसने अपनी धार्मिकता बरकरार रखी है, भले ही उसने रास्ते में बहुत सारी गलत सोच प्रदर्शित की हो। याद रखें, नौकरी सही नहीं है। वह ईश्वर पर सही दृष्टिकोण नहीं दे रहा है, लेकिन वह अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखता है। दोस्तों से अलग हुए 21:43 से 22:17। वह अपने मित्र की सलाह को अस्वीकार कर देता है। वह किसी भी सुझाव को स्वीकार करके कि उसने पाप किया है, अपनी समृद्धि की बहाली से इनकार कर देता है। तो इस बिंदु पर हम पुस्तक में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। संवाद चक्र समाप्त हो गया है। चैलेंजर का विवाद अलग रखा गया है। दोस्त बन गए। वे वास्तव में पुस्तक के दूसरे भाग में अंत तक शामिल नहीं हैं, जहां उनका फिर से उल्लेख किया गया है। प्रवचन अनुभाग में संक्रमण 22:17 से 22:49। यह वह जगह है जहां हम प्रवचन अनुभाग में संक्रमण की ओर बढ़ते हैं, जहां अय्यूब का आरोप लगाया जाएगा। क्या धर्मी लोगों को कष्ट सहना एक अच्छी नीति है? लेकिन इससे पहले कि हम उस तक पहुंचें, हम अध्याय 28 में भजन में ज्ञान के लिए पाए गए परिवर्तन को देखेंगे और हम इसे अगले खंड में उठाएंगे। यह डॉक्टर जॉन वाल्टन और जॉब की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह 17:16 संवाद चक्र 3:22 से 27 है। 22:49।